नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। आंध्र प्रदेश सरकार 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए परिवहन वाहनों पर तिमाही कर बढ़ाने की तैयारी कर रही है। आधिकारिक सूत्रों ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने हाल ही में संसाधन जुटाने पर एक बैठक में तिमाही कर वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सूत्रों ने बताया कि इसके तहत परिवहन विभाग ने टैक्सी, ट्रक और बस जैसे परिवहन वाहनों पर तिमाही कर को 20-25% तक बढ़ाने की योजना तैयार की है। राज्य सरकार ने पिछले साल दिसंबर में 2-पहिया और 4-पहिया वाहनों पर हरित कर में वृद्धि की थी। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने कहा है कि बेलगांव मुफ्त सौगात को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस राशि का इस्तेमाल बुनियादी ढांचे के निर्माण या स्वास्थ्य क्षेत्र में किया जा सकता है। सान्याल ने हालांकि कहा कि लक्षित सब्सिडी जरूरी है, क्योंकि इससे गरीबों को जरूरत के समय में मदद मिलती है, जैसा कि कोविड महामारी के दौरान हुआ था। उन्होंने पीटीआई भाषा से कहा, हमें पूरी तरह गरीबी को लक्षित करने की ज़रूरत है, लेकिन बेलगांव मुफ्त सौगात को निश्चित रूप से हमें प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। सान्याल ने कहा कि बेलगांव सब्सिडी जैसे मुफ्त बिजली या कुछ ऐसा जो ठीक से लक्षित नहीं है कि कीमत आखिरकार चुकानी ही पड़ेगी। उन्होंने कहा, जो धनराशि बेलगांव मुफ्त सौगात पर खर्च की जाती है, उसे कुछ अन्य कार्यों पर खर्च किया जा सकता है, जैसे बुनियादी ढांचे का निर्माण या स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रज्जाक की कंपनी एक मलेशिया डेवलपमेंट बरहाद से जुड़े एक संदिग्ध लेन देन की सूचना देने में विफल रहने के कारण भारतीय मूल के एक बैंकर पर 10 साल का प्रतिबंध लगाया गया है और 24 महीने की सशर्त चेतावनी जारी की गई है। सिंगापुर मौद्रिक प्राधिकरण और सिंगापुर पुलिस बल ने एक बयान में कहा कि BSI बैंक लिमिटेड की सिंगापुर शाखा के पूर्व डिप्टी CEO और निजी बैंकिंग के प्रमुख राज श्री राम पर सोमवार को ये प्रतिबंध लगाया गया। चैनल न्यूज़ एशिया की रिपोर्ट के अनुसार ये प्रतिबंध सोमवार से प्रभावी है और MAS ने जारी किया है। सशर्त चेतावनी SPF के वाणिज्यिक मामलों के विभाग ने जारी की है। अमेरिकी मुद्रा की मजबूती और विदेशी कोषों की लगातार निकासी के बीच मंगलवार को शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 1 पैसे की गिरावट के साथ 82.41 पर था। इसके अलावा घरेलू शेयर बाजारों में कमजोरी और निवेशकों के बीच जोखिम से बचने की भावना से भी रुपया प्रभावित हुआ। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 82.35 पर खुला और फिर गिरावट के साथ 82.41 पर पहुंच गया। इस तरह रुपया पिछले बंद भाव के मुकाबले 1 पैसे की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। रुपया सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 10 पैसे टूटकर 82.40 के सर्वकालिक निचले स्तर पर बंद हुआ था। इस बीच 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.12% बढ़कर 113.27 पर पहुंच गया। वैश्विक तेल सूचकांक ब्रेंट क्रूड वायदा 0.28% गिरकर 95.92 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर था। शेयर बाजार के अस्थायी आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों ने सोमवार को शुद्ध रूप से 2,139.02 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। कमजोर वैश्विक संकेतों और विदेशी कोषों की निकासी के चलते मंगलवार को शुरुआती कारोबार में प्रमुख शेयर सूचकांकों में गिरावट आई। इस दौरान BSE सेंसेक्स 220.86 अंक गिरकर 57,770.25 पर आ गया। व्यापक NSE निफ्टी 68.05 अंक गिरकर 17,172.95 पर था। सेंसेक्स में टाइटन, पावर ग्रिड, मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारतीय एयरटेल, हिंदुस्तान यूनिलिवर, ICICI बैंक और भारतीय स्टेट बैंक गिरने वाले प्रमुख शेयरों में शामिल थे। दूसरी ओर एशियन पेंट्स, इन्फोसिस, विप्रो, HCL टेक्नोलॉजीज और ITC में बढ़त हुई। अन्य एशियाई बाजारों में सोल, टोक्यो और हांगकांग के बाजार लाल निशान में कारोबार कर रहे थे, जबकि शंघाई में तेजी थी। अमेरिकी बाजार सोमवार को गिरावट के साथ बंद हुए। सोमवार को सेंसेक्स 200.18 अंक या 0.34% की गिरावट के साथ 57,991.11 पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 73.65 अंक या 0.43% गिरकर 17,241 पर बंद हुआ। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय तेल सूचकांक ब्रेंट क्रूड वायदा 0.28% की गिरावट के साथ 95.92 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर था। पाकिस्तान विभिन्न देशों के करीब 27 अरब डॉलर के द्विपक्षीय ऋण को पुनर्गठित करने की कोशिश कर रहा है। पड़ोसी देश के वित्त मंत्री इशाक डार ने सोमवार को ये जानकारी दी। उन्होंने पेरिस क्लब बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय सॉवरेन बॉन्ड के तहत अमीर पश्चिम देशों से मिले अंतर्राष्ट्रीय ऋण के पुनर्गठन को खारिज किया। उन्होंने साथ ही कहा कि द्विपक्षीय ऋण का पुनर्गठन ठीक है। डॉन अखबार की खबर के मुताबिक वित्त मंत्री ने कहा कि पेरिस क्लब के कर्ज का पुनर्गठन करने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि इन लेनदारों का कुल कर्ज कुल विदेशी कर्ज के 11% से अधिक नहीं है और एक साल में मिलने वाली कर राहत 1.2 अरब डॉलर से कम है। पाकिस्तान पर पेरिस क्लब के देशों का कुल 10.7 अरब अमेरिकी डॉलर बकाया है। डार ने कहा, जब हम बाहरी भुगतान के लिए 32-34 अरब अमेरिकी डॉलर की व्यवस्था करने जा रहे हैं, तो ऐसे में 1.2 अरब डॉलर कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। पुनर्भुगतान में लगभग 22 अरब डॉलर का विदेशी ऋण और लगभग 10 से 12 अरब डॉलर का चालू खाता घाटा शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार पेरिस क्लब को छोड़कर पाकिस्तान का कुल द्विपक्षीय ऋण इस समय लगभग 27 अरब डॉलर है, जिसमें चीनी ऋण लगभग 23 अरब अमेरिकी डॉलर है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए INJANSATTA.com पर नमस्कार।